ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डे जेनेरो यात्रा को लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करेंगी। श्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरो की यात्रा पूरी करने के बाद कल रात ब्राजीलिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी और राष्ट्रपति लुला द सिल्वा प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
After the talks, we are hoping to sign 4 agreements between the two countries, namely on renewable energy, counter-terrorism, agricultural research cooperation between Indian Council for Agricultural Research and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचेंगे। उनकी यात्रा नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेतवाह के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे और नामीबिया के संस्थापक तथा पहले राष्ट्रपति डॉ सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी देंगे। श्री मोदी की ये पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा होगी, जो 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी। कैबिनेट ने युवाओं, पलायन, कौशल विकास और समग्र विकास के मामलों को देखने के लिए 7 सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है।
आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सार्वजनिक संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नामों का गलत उच्चारण करके उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की महिला और दलित विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। खेलों में विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम आज से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होने वाली तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारत की अगुवाई करेंगी। टूर्नामेंट में 16 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहा है। उधर विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज का मुकाबला ब्रिटेन के कैमरन नोरी से होगा। महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी अरियाना सबालेंका का सामना गैर वरीयता प्राप्त जर्मनी की लॉरा सिजमंड से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के मध्य भागों में मानसून सक्रिय है। विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इधर कोलकाता और आसपास के जिलों में आज सवेरे से लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।